शांति। हम सभी परमात्म पालना में पल रहे हैं। क्या कहा गीत ने, कितने अच्छे शब्द हैं। बाबा की प्यार ने जीना ही सिखा दिया। देखो कितनी बड़ी बात, संसार में लोग जी तो रहे हैं पर जीवन का सुख नहीं मिल रहा है। बाबा ने हमें प्यार देकर, ये प्यार ऐसा है जैसे अमृत के छींटे डाल दिए, वैसे भी प्यार ऐसी ही चीज है, किसी तरफ की हुई आत्मा को सच्चा प्यार मिल जाए तो सुरजीत हो जाते हैं। हम सबको मिला परमात्म प्यार, मिला या नहीं, ये ठीक कहता है। माताओं की गर्दन नहीं हिल रही है, सोच रहे पता नहीं ये प्यार क्या होता है, मिला कि नहीं मिलता है ये प्यार, कि नहीं मिलता है ये प्यार, कि नहीं मिल सकता है ये प्यार, सोचना है। जो देखो बाबा बहुत अच्छी बात कहते आए हैं, जो बच्चे सुखदाई हैं वो मेरे प्यार के पात्र हैं, जो जितने देहे से न्यारे वो उतने ही परमात्म प्यार के पात्र हैं। हम सभी को ये अधिकार मिला है। बाबा की मुरलियां स्वमान पर बहुत चल रही हैं, याद है ना सभी को, और एवर रेडी की बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा दे दी। हर बार ये शब्द हम सुन के आते हैं अचानक, एवर रेडी लंबा काल। एवर रेडी की बहुत अच्छी परिभाषा दे दी, याद कर लें आप सभी जरा। संकल्प किया स्वमान और वरदान का, और एक सेकंड में उसके स्वरूप बन गए। ये है उन आत्माओं की निशानी जिन्होंने अपने को तैयार कर लिया है। किस काम के लिए, एक ही बात सबके ख्याल में आती है कि घर जाने के लिए, लेकिन बात केवल घर जाने की नहीं है। किसी पिछली मुरलियों में एक बहुत ही राज भरी बात बाबा कह आए हैं, संसार में दुख बढ़ रहा है। देखो भगवान के तो सब बच्चे हैं, जब वो अपने बच्चों को इस संसार में चिल्लाते हुए दुखों में कराते हुए दिखता होगा ऊपर से, तो क्या होता होगा उसको, बाप है ना वो, उसके पास मात पिता का दिल है, निराकार होते हुए भी मात पिता की फीलिंग है ना। तो उसने कहा है, जब तक तुमने सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त नहीं किया तुम मुक्ति धाम नहीं जा सकोगे। अपने कर्तव्य पूर्ण किए बिना हम वहां नहीं जा सकेंगे। तो हमें एवर रेडी केवल घर जाने के लिए नहीं होना है, संसार को देने के लिए। आपको भी दिखता हो, मुझे तो बहुत दिखता है, क्योंकि ऐसे फोन आते हैं, समाचार आते हैं, आत्माओं को मानसिक कष्ट बढ़ता जा रहा है। मानसिक मन सभी का निर्बल होता जा रहा है दुखों की। बाबा कहा करते हैं, ये तुम्हारे वर्तमान दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। ऐसे में हम सबको रेडी होना है संसार को बहुत कुछ देने के लिए। बोलो माताएं होंगी, होंगी माताएं रेडी, अपने परिवार को तो सभी देते हैं, संसार को देना है। और दे वही सकेंगे जो सभी खजानों से भरपूर हों। सीधी सी बात है, जिनके पास सब कुछ होगा वही देंगे, बाकी तो लेने वाले ही रह जाएंगे। तो हम अपने को समान और वरदान में जल्दी से जल्दी स्थित कर सके, इसको अपना लक्ष्य बना लें। ये दोनों ही बात योग की ही है। कोई ये ना सोचे कि बाबा ने पीछे कुछ कहा, फिर कुछ कहा, तब और कुछ कह दिया, क्या क्या करें, ये सब एक ही है। समान और वरदान की साधना हमें निराकारी और फरिश्ते स्वरूप में सहज स्थित कर देती है। जब बाबा ने दूसरी मुरली में कहा मैं आत्मा करावनहार हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालिक हूँ, इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है, इस फीलिंग में स्वमान का अभ्यास हमें सहज ले आता है। बाबा ने हरेक अपने बच्चे को वरदान दिया है, उस वरदान को हमें फलीभूत करना है। बाबा ने यही शब्द बोले अभी एक सेकंड में, वरदान को फलीभूत करके अनुभवी मूर्त बनो। हमें वरदान मिले हैं, सबको मिले हैं। कौन सा वरदान किसके लिए वरदान बन गया है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि किस वरदान को हम अपने लिए वरदान स्वीकार कर लें। वरदानों को स्वीकार करना, उसके नशे में आ जाना, इस फीलिंग में रहना, ये वरदाता से मुझे वरदान प्राप्त है। वरदान माना वो होगा ही, वो सहज रूप से काम करेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी। आज हम इस पे ही चर्चा करते हैं, हमें स्वमान को वरदान बनाना है और अपने को स्वमान में स्थित करना है। सभी बाबा के द्वारा बताए गए स्वमान को जानते हैं, कोई जानते हैं, कोई नहीं भी जानते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत आत्माएं मिलती हैं जिनसे यदि हम पूछते हैं स्वमान क्या होता है तो उन्हें इतना ही पता है मैं आत्मा से अंत स्वरूप हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता है। ये तो आत्मा की एक क्वालिटी है केवल। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, जिसको बाबा ऐसे कहते थे, तुम्हारे ज्ञान की शुरुआत भी इसी से हुई कि मैं कौन, और ज्ञान की समाप्ति भी इसी से होगी मैं कौन। अंतर हो जाएगा सभी साधनाओं के बाद, एक अंतर हो जाएगा। शुरुआत हुई मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। अंत होगा मैं कौन सी आत्मा हूँ। समझते चलें सभी, हमें इस स्वरूप तक पहुँचना ही है कि हम अपने को संपूर्ण रूप से जान लें, मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस सृष्टि चक्र में मेरा कौन सा ही रूपार्थ है, वर्तमान समय में मेरे पास क्या क्या शक्तियाँ और क्या क्या वरदान हैं। ध्यान देंगे इन शब्दों पर, हमें स्वयं को पहचानना है, अपनी शक्तियों को, अपने वरदानों को, अपनी जिम्मेदारियों को, हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से अधिकार ऑलमाइटी अथॉरिटी से हमें मिल चुके हैं, जो बाबा बार बार हमें रियलाइज करा रहे हैं, पहचानो अपने को, किसने तुम्हें अथॉरिटी दी है, जिससे हम अपने अंदर इस फीलिंग्स को लाया करें और पहचाने मुझे सर्वशक्तिमान से ये अधिकार मिल चुके हैं। तो कोई इसकी पहचान नहीं है, ये पहचान समझ लेती है। चिंतन करें, मूल्यों का अध्ययन करें, बाबा क्या कह रहा है, जब वो कहता है बाबा के चेहरे के हाव भाव देखा करें, कितना प्यार है उसके पास हम आत्माओं के लिए। वो क्या कर देना चाहता है हमारे लिए, वो हमें कहाँ ले जाना चाहता है, उसकी भावनाओं को समझ लें। परमात्म प्यार को समझकर यदि हम उसके प्यार का सही रेस्पॉन्स देंगे, सही उत्तर देंगे, तो उसका न केवल प्यार बढ़ता जाएगा लेकिन अनेक शक्तियाँ और वरदान भी हमारे पास आ जाएंगे। तो महसूस कर लें, जान लें मेरे पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, कौन कौन से वरदान हैं। वरदान बनाना है अपने पास, स्वीकार करना है। वरदान तो रोज भी मुरलियों में आ रहे हैं, बाबा ने भी अव्यक्त में भी बहुत बातें कही हैं। मैं आपसे कहूंगा कम से कम कोई एक वरदान अपने लिए ले लें, उस पर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, आप स्वीकार कर लें बाबा ने मुझे वरदान दिया मैं विघ्न विनाशक हूँ। ऐसा सीन बनाए, ऐसा चित्र बनाए कि बाप दादा मेरे सामने हैं। जो और सीन नहीं बना सकते वो ये सीन बना लें, जब अव्यक्त बाबा आते हैं, बाबा बड़े हॉल में आए हुए हैं, मुझे बाबा ने बुला दिया, मैं स्टेज पर, बाबा ने हाथ रख दिया सिर पर और कहा बच्चे बाप वरदान देते हैं तुम विघ्न विनाशक हो। तुम संकल्पों से, दृष्टि से अपने चरण कहीं डालकर दूसरों के विघ्न नष्ट कर सकोगे, ये तुम्हें वरदान देते हैं। अब सोच लें सभी, ऐसे आप चुन लें कोई भी एक, कम से कम एक, सारे ले लें तो बहुत अच्छा, एक दो तीन। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं प्रकृति की मालिक हूँ, प्रकृति हमारे आदेश का पालन करेगी क्योंकि हम उसके मालिक हैं। ये स्वमान भी है और इसको हम वरदान रूप में ग्रहण कर लें। अब आवश्यकता इस चीज की है कि जो वरदान हम स्वीकार करते हैं उसको हम रोज सवेरे इसी तरह अपने को याद दिलाएं। बाबा का हाथ सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, तुम्हें संसार के विघ्नों को नष्ट करना है। समझ में आ रहा माताओं की, उस माताएं आश्चर्य से देख रही कि ये भी होता है क्या। कुछ माताओं के हाव भाव से लग रहा उनके अंदर कुछ जा नहीं रहा, सोच रहे कुछ अच्छी बात तो हो रही है, पर ऐसा हो सकता है क्या। हो सकता है माताएं बताएं, रंगीन कपड़ों वाली दिख रही है, रंगीन कपड़े वाली माताएं अलग अलग सोच रही हैं, वो ऐसा ही होगा। फिर हम इसको प्रैक्टिकल फलीभूत करने लगे, प्रयोग करें इसका। अब देखो कैसे करेंगे, आपके पास कोई आता है कहता है भाई ये समस्या हो गई है बहुत, आप योग अभ्यास करें, अपने को योग युक्त करें, उसे दृष्टि दें, आत्मा देखें, ये आवश्यक है। आत्मा देखें, दृष्टि दें, संकल्प करें, इसकी ये समस्या समाप्त हो जाए। प्रभाव देखें, करें ऐसा धीरे धीरे। कहीं दूर किसी ने आपको बताया कि भाई हमारे पास ये समस्या चल रही है, ये विघ्न चल रहा है, दूर है वो, यहाँ सामने नहीं है जिन्हें दृष्टि दी जा सके, अपने को स्थित करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। दूर से ही दृष्टि डालकर संकल्प करें इनका ये विघ्न नष्ट हो जाए और परिणाम देखें। फलीभूत करेंगे हम वरदानों को, ये अनुभव धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, अपना रंग दिखाएंगे और हम अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। हमें स्वयं में विश्वास होता जाएगा कि हम संकल्प शक्ति से, दृष्टि की शक्ति से, अपने स्वमान की शक्ति से योगयुक्त होकर किसी के भी विघ्नों को हर सकते हैं। कैसे? कोई भी एक वरदान आप ले लें, आने वाला समय हम सभी को हमारे कर्तव्यों की याद दिलाएगा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, जब संसार में हाहाकार होने लगेगा तो आत्माएं हमारे द्वार पर आएंगी, हमें शांति दो। हम सभी नहीं कहेंगे राजयोग सीख लो, आओ प्रदर्शनी समझा देते हैं, ज्ञान ले लो। वो कहेंगे ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं, हमें तो शांति दो। उस समय जिन्होंने अपना जीवन लंबा काल शांति में बिताया है, अपने को अशांत नहीं किया है, अपनी शांति को डिस्टर्ब नहीं होने दिया है, जिन्होंने दूसरे के लिए अपने चित्त में शुभ भावनाएं भरी हैं, साइलेंस पावर जमा की है, बस वो दृष्टि देंगे, वाइब्रेशंस देंगे, संकल्प करेंगे, इनका चित्त शांत हो जाए, चित्त शांत होने लगेगा। जो भी अपने से ये महान सेवा करना चाहें वो अभी से अपने को तैयार करें। हमें बड़े बड़े काम करने हैं। एक बड़े काम की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा ये कहते हैं सबको संदेश दो, लेकिन दो धर्म इस धरती पर ऐसे हैं जिनमें बहुत कट्टरता है, वो हमारे संदेश को सुनते नहीं है। वो कहेंगे ये हिंदुओं का है, ये तुम्हारा है, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। लेकिन संदेश तो उन्हें भी बाबा का देना है, केवल संदेश देने से काम नहीं हो जाएगा। क्या करना है हमें, क्योंकि सभी आत्माओं को मुक्ति में ले चलना है। मुक्ति बाबा का वर्षा है सबके लिए, परंतु वो तब मिलेगा जब हर आत्मा एक बार दिल से स्वीकार करते हुए कहेगी मेरा बाबा वो मेरा है। मेरा कहते ही मुक्ति तुम्हारी। आप सोच लें, दो धर्मों की मैंने बात कही, और भी कुछ छोटे छोटे धर्म हैं जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन उन्हें मुक्ति का वर्षा वरदान तो दिलाना है। ऐसे में ये दोनों धर्म आपको मालूम होना चाहिए, फरिश्तों में बहुत विश्वास रखते हैं। सुना है ना, फरिश्ते दोनों की ही मान्यता है। उनके धर्म पिताओं के द्वारा फरिश्तों ने ज्ञान दिया है उनका, उनके फरिश्तों के नाम भी हैं उनमें, तो फरिश्तों में उनका बहुत विश्वास है। जैसे भारत में हिंदू लोग किसी देवता के दर्शन कर लें तो बलिहार हो जाएंगे ना, ये दोनों धर्म अगर फरिश्तों का स्वरूप देख लें तो बस बलिहार हो जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा इन आत्माओं को संदेश मिलेगा, संदेश, और ये स्वीकार करेंगे उसके बाद मेरा बाबा, मुक्ति मिलेगी। ये उनके द्वारा होगा जो फरिश्ता बनेंगे, कि शरीर में रहते हुए फरिश्ते, शरीर छोड़कर फरिश्ते नहीं, जिन्होंने अपने को संपूर्ण लाइट कर दिया हो हल्का, जो बाबा ने अभी कहा नॉलेज इज लाइट, ज्ञान लाइट भी है, प्रकाश है, ये हमारे अंधकार को दूर करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हम ऐसे रहने लगते हैं जैसे प्रकाश में रहते हैं। देखो छोटी सी बात पे ध्यान दें, एक व्यक्ति अंधकार में रहता हो, अंधेरे में उसे सारे काम करने पड़ते हो, हम समझ सकते हैं वो बहुत सारे काम कर भी नहीं पाएगा, उसे कुछ करना हो अंधेरे में नहीं होगा, बिल्कुल उसके बाद लाइट नहीं, करंट नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, वो बहुत थोड़े काम कर सकेगा, भटक जाएगा, कहीं गिर जाएगा। और जो व्यक्ति प्रकाश में रहकर काम करता हो, जिसके पास लाइट भी हो, करंट भी हो, वो बहुत सारे काम कर सकता है। ज्ञान प्रकाश है, हम प्रकाश में आ गए हैं, हम प्रकाश में रहते हुए कार्य कर रहे हैं, प्रकाश के द्वारा हम अपने को डबल लाइट बना रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, बंधनों को छोड़ रहे हैं और फरिश्ता बनने के लिए एक ही सबसे बड़ी चीज है जिसकी आवश्यकता है, वो है पवित्रता, जो आत्मा को बंधनों से मुक्त करती है। अपवित्रता नहीं तो बांधा है, हर मनुष्य को हर आत्मा को बांधा है पवित्रता ने, ज्ञान का प्रकाश हमें इस बंधन से मुक्त कर देता है। तो हमें बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए वरदान स्वरूप भी अपना बनाए और स्वमान पर बहुत अच्छा अभ्यास करें। स्वमान पता है माताओं को, स्वमान कौन सा देते हैं बाबा माताओं को, कौन हो तुम, शिव शक्ति, और कौन हो बोलो जरा, अधिकारी, और कौन हो मास्टर सर शक्तिवान, ये तो पक्का कर दिया है सबने। भाइयों को कौन सा सम्मान देते हैं बाबा, ऐसे सबको एक ही देते हैं, फिर भी बोलो तुम विश्व कल्याणकारी हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, महावीर हो, बोलो अपने अपने सम्मान, आदि रतन, आदि रतन, और बोलो कुछ, पवित्रता के सूर्य हो, पूर्वज हो, उद्धार मूर्त आधार मूर्त हो, इन स्वमानों का हम कैसे अभ्यास करेंगे। हम एक स्वमान ले लेते हैं आज, तो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो, आधार हो तुम विश्व के, तुम्हें विश्व का उद्धार करना है, आत्माओं का उद्धार करना है, प्रकृति का भी कल्याण करना है, जीव जंतु पशु पक्षी सबका कल्याण तुम्हें करना है। पहले हम किसी भी स्वमान को लेकर उस पे चिंतन करेंगे, हम आधार हैं, आधार, आधार यदि अच्छा न हो बिल्डिंग का, आधार माना नींव, अगर नींव कच्ची कर दी जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी, जरा सा भी तूफान हो, जरा सा भी भूकंप हो जाए, गिर जाएगी। हम आधार हैं, हम यदि कच्चे होंगे, चिंतन करना इस तरह, हम यदि कच्चे होंगे, हम यदि कमजोर होंगे, तो संसार की जो ये विशाल बिल्डिंग है ये हिलती रहेगी ना, लोग भयभीत रहेंगे, गिर न जाए। वैसे भी किसी बिल्डिंग वाले को पता हो कि हमारी नींव तो कच्ची है, 6 इंच खोद के ही नींव डाल दी है, 3 फुट 4 फुट नहीं खोदी है, तो डर रहेगा ना भाई, कभी भी हमारी बिल्डिंग तो गिर सकती है। हम विश्व के आधार हैं, हमें याद रखना है, हमारी स्थिति ही विश्व की स्थिति बनेगी। हम हंसेंगे तो जग हंसेगा, हम उदास हो गए तो बाबा बहुत अच्छी बात सिखाते आए हैं, एक तो मोटी बात कहते आए हैं, जैसा कर्म तुम करोगे तुम्हें देखकर और भी करेंगे। हमें सारा संसार तो नहीं देखता, फिर भी हमें सारा संसार फॉलो करेगा, लेकिन इससे भी सूक्ष्म बात, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही सब सोचने लगेंगे। हम जिम्मेदार हैं, आधार जिम्मेदार होता है, हम ध्यान दें अपने ऊपर, हमारे संकल्पों का प्रभाव संसार पर पड़ रहा है, हम निगेटिव सोचेंगे सब निगेटिव हो जाएंगे। जो अपने को जिम्मेदार समझे, कई आत्माएं ये भी सोच सकती हैं, भला मेरे सोचने से क्या होगा, मैं कुछ भी सोचूं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा। बाबा ने इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात कही है, तुम पूर्वज हो, तुम्हारी स्थिति पर समय और संसार की स्थिति का आधार है, तुम्हारा एक एक संकल्प संसार की सभी आत्माओं को बल देता है। अच्छा संकल्प, कमजोर संकल्प सभी आत्माओं में कमजोरी पैदा करेगा। हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं कुछ भी करें कुछ भी सोचें, हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं जिनके ऊपर पूरा कल्पवृक्ष खड़ा है। चित्र बना लें अपना एक, हमारे सिर पर ही सारा कल्पवृक्ष स्थित है, हमारे ब्रेन में जो चिंतन चल रहा है, हमारे विचारों की हमारे संकल्पों की जो क्वालिटी है जो उनका लेवल है उसका संपूर्ण प्रभाव कल्पवृक्ष में पहुंच रहा है। तो हम आधार हैं, मजबूत करें आधार को, ये हमारी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का साधन हो जाएगा। उद्धार मूर्त है, न केवल मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाले हैं, लेकिन हम सभी को दुखों से अशांति से परेशानियों से समस्याओं से मुक्त करने वाले भी हैं। लंबा काल मुक्त रहने वाली आत्मा ही दूसरों को मुक्ति दे सकेगी। मुक्त करें अपने को। गृहस्थ में रहने वाले शायद सोचते होंगे हम मुक्त कर देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, सोचता है मनुष्य। माता तो सीधा ही सोचती होंगी ये काम अपना नहीं, ये उनका है जो सेंटर में रहते हैं, हम वाला कैसे मुक्त हो सकते हैं, बच्चों की पालना करनी, उन्हें पढ़ाना खिलाना पिलाना सुलाना, उनके सुख दुख उनकी चिंताएं उनके टेंशन भी सब सहना है, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। पर सत्य ये है, हम जितने मुक्त होंगे परिवार की पालना सहज सुंदर रूप से होगी, हमारे बंधन हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं, एक छोटे परिवार की पालना करना भी दुष्कर हो जाता है। हमारी स्थिति श्रेष्ठ, बंधन नहीं, हमारी मानसिक शक्तियाँ केंद्रित, हमारा मनोबल बढ़ा चढ़ा, हमारे सुंदर विचार, हमारा सुंदर स्वमान हमारे परिवार को श्रेष्ठ स्थिति में रखेगा। देख सकते आप साक्षी होके जितने ब्राह्मण यहाँ सभा में बैठे हैं, जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो, सूक्ष्मता से देखो, आपकी जैसी स्थिति आपके परिवार की वैसी स्थिति है। चेक कर लेना, आज जब हम संसार के पूर्वज हैं उनके आधार मूर्त हैं, तो पहले तो अपने परिवार के आधार मूर्त हैं ना सब। माँ जिन बच्चों को जन्म देती है माँ उनकी आधार मूर्त है, माँ की संपूर्ण स्थिति बच्चों पर प्रभाव डालती है। तो यदि हम अपने परिवार को भी सहज भाव से सुख पूर्वक चलाना चाहते हैं तो हमें अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। एक और बात पर विचार करना है, स्वमान की बात है, हमें बाबा ने स्वमान दिया, तुम इष्ट देव हो इष्ट देविया हो। हम अपने स्वमान को जरा फील करें। देखिए सब जानते हैं भारत में कितनी जगह महान तीर्थ बन गए उस स्थान पर स्थित इष्ट देव देवी के कारण, कई मंदिर प्रसिद्ध हो गए, हनुमान के बहुत सारे मंदिर आजकल उनके नाम भी अलग अलग रहते हैं, क्योंकि फलाना जो हनुमान का मंदिर है बड़ा फलदायक है वहाँ का हनुमान, तो वहाँ का हनुमान अलग यहाँ का हनुमान अलग, बहुत सारे हनुमान हो गए हैं आजकल। तो वो एक की बात नहीं, वो हम सब हनुमान महावीर आत्माओं की ही बात है। एक पूजनीय मूर्ति से एक स्थान एक एरिया एक लंबी चौड़ा स्टेट पूरा राज्य वहां पर पहुंचता है उसको तीर्थ स्थान मानकर, भाई इस मंदिर में जाने से विघन नष्ट हो जाएंगे। इस मंदिर में जाने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इस मंदिर में जाने से भूत प्रेत की बाधा नष्ट हो जाएंगी। इस मंदिर में जाने से पूर्वजों के जो विघन चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। हम सोच लें, हम इस देव देवियां हैं, हमारी यादगार से, हमारी पत्थरों की मूर्ति से ये सब कुछ हो रहा है। कितने पंडितों ब्राह्मणों की पालना हो रही है, कितने साहूकार हो गए हैं पंडितों, किनसे? और हम लोग साहूकार हैं या नहीं? मैं हंसा करता हूं, मुझे अभी किसी ने सुनाया कि दिल्ली के एक सेठ जी अभी अभी साईं बाबा की जो मूर्ति है ना महाराष्ट्र में, जहाँ उसका मूल स्थान है शिरडी, शिरडी वहां पर पता नहीं कितने तोला, उसने बताई तुमने तोले की माला हार बनाकर साईं बाबा के गले में पहना कर आए हैं सोने की। पीछे में गया तो मुझे बता रहे थे, मुझे भी ले गए वहां, मैं उधर ही गया था भट्टी के लिए, कहा साईं बाबा का इतने सोने का सिंहासन बनाया है, सोने का इतने इतना ज्यादा मन मन कह रहे थे कितना किलो सोने का। मैंने साईं बाबा की कहानी पढ़ी थी, मैंने कहा जब साईं बाबा था यहाँ उस बेचारे को लोग भोजन भी नहीं देते थे, जहाँ वो चलता था जूते फेंक देते थे उसके ऊपर, चंकर फेंक देते थे, भूखा रहा, हिंदू कहते थे मुसलमानों का है, मुसलमान कहते थे हिंदुओं का है, और मरने के बाद तो देखिए जब वो जिंदा था तो भोजन भी नहीं, और जब मर गया तो उसके नाम से अनेक लोग भोजन खा रहे हैं, अनेक परिवार पल रहे हैं, कितने लोग साहूकार हो गए हैं, कितने चोरों की भी नजर होगी, सोना बहुत है कुछ कर लें। हम सब भी याद करें हम इष्ट देव देवियां हैं, अपने स्वरूप में यदि हम रहने लगे, माताएं यदि अपने परिवार में इस समान में रहने लगे मैं इष्ट देवी हूँ तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? आपका घर, आपका घर मंदिर बन जाएगा। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा हमारा सारा परिवार ज्ञान में कैसे आए, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा हमें बहुत बंधन है, लोग ज्ञान में चलने नहीं देते, हमारे लिए ये सहयोगी नहीं है, इस देवियों का कोई विरोध करे ये हो ही नहीं सकता, सभी की समस्याओं का हल है ये, आपके परिवार की जो भी समस्या है उसको आप इस सुमान में स्थित होकर हल करें। मैं इष्ट देवी हूँ। कौन कौन है इष्ट देवी? हाथ उठाएंगे जरा माताएं। अच्छा आधी तो बैठी हैं, आधी भक्त पुजारी हैं, बहुत माताओं को पता नहीं, मैं देख रहा हूँ गांव से आई हैं, बेचारी बाबा बाबा ही करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। माताएं सीख लें हम इष्ट देवियां हैं, बस ये स्वरूप प्रकट होता जाएगा, और इस स्वरूप में रहने से हमसे जो वाइब्रेशन फैलेंगे उससे सभी खींच खींच कर बाबा के पास आ जाएंगे। आपको याद हो अभी अभी की मुरलियों में, सकार मुरलियों में भी, पिछले 15 दिन की मुरलियों में ही ये बात आ चुकी है, पवित्रता और योग की शक्ति से तुम्हारे पास आत्माएं खींच खींच कर आती रहेंगी। ये दोनों आधार हैं सेवा की वृद्धि के, हमें सेवाओं में कुछ भी ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, सेवाएं सहज निर्विघ्न भी हो जाएंगी अगर हमारे पास ये दोनों बल बढ़ते चले। सब जानते हैं कि पवित्रता कोई एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए हमें लंबी साधनाएं करनी है, योग को बढ़ाने के लिए भी हमें निरंतर साधनाएं करनी है, तपस्या करनी है, पर हम उस ओर चलें, विघ्नों का असली कारण क्या पवित्रता ही है। सब समझ लें इस बात को, चाहे वो परिवार पर विघ्न आ रहे हों, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन पर व्यधन आ रहे हों, चाहे कहीं हमारी सेवाओं में विघ्न आ रहे हों, हम अपनी पवित्रता को ठीक करें, विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता का विशाल अर्थ भी है। कई लोग सोचते हैं हमने तो ब्रह्मचर्य अपना लिया, हमने तो कोई भूल नहीं की जीवन भर, हमारे संकल्प भी बिल्कुल शुद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन मन में यदि घृणा है, मन में यदि स्वार्थ है, पवित्रात्मा होने पर भी यदि हम दूसरे को सुख न देकर दुख देते हैं, यदि हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं हुई हैं, हम शुभ भावनाओं की बजाय दूसरों से बदले की भावना रखते हैं, तो हमारी प्योरिटी की शक्ति नष्ट हो जाती है। कितना भी अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली आत्मा, यदि उसके पास ये सब हैं, तो समझ लें उसके पास पवित्रता तो है, पर पवित्रता का बल नहीं है, इसलिए विघ्न बहुत आएंगे। तो हम अपने को बहुत मजबूत करें। फिर से बाबा हमारे सामने होगा, कितने दिन रह गए? 4 तारीख, 4 एक हफ्ता रह गया है। एक हफ्ते में हम सभी अच्छी तैयारी करेंगे अब बाबा से मिलने की। हमारे ही जन्मदिन पर बाबा आएगा या हम उसके जन्मदिन पर जाएंगे, दोनों बात होंगी। बाबा अपना झंडा लहराएगा। जब पहली बार बाबा ने अपना झंडा लहराया, मुझे याद रहता है वो सीन, हम शांति भवन बना बना था, बाबा आए और शिवरात्रि पर बाबा ने अपना झंडा लहराया पहली बार। बड़ा आकर्षक दृश्य था, मन पर छा गया। कई बार जब मैं सोता था तो मुझे वो सीन और जो था भगवान को देखा अपना झंडा लहराते हुए। हम सब भी इन स्मृतियों को अपनी यादगार बना लें। सभी सोचें कि सुंदर अंतिम जीवन में, सुंदर जीवन है ये। लगता है सबको सुंदर या नहीं? सुंदर लगता है भाइयों को? कि अभी ना मतलब की परेशानियां बहुत हैं जीवन में, फिर भी सुंदर है ये। परेशानियां तो सारे संसार में हैं, लेकिन हमारे साथ क्या है? हमारे जीवन की यात्रा पर भगवान भी हमारा साथी बन गया है। मुझे जब कोई कभी दिखाता है कि भाई फलाने महापुरुष ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, तो मैं सोचता हूँ यदि हम सब अपनी जीवन कहानी लिखें, तो सभी एक बात तो लिखेंगे ना, जब हम 20 साल के हुए, जब हम 30 साल के हुए, तो हमारी जीवन की यात्रा में कौन शामिल हो गया? स्वयं भगवान। और उसके बाद क्या क्या हुआ? यदि सभी अपनी जीवन कहानी लिखें, तो लिखने में ही आनंद आ जाएगा। इस जीवन में इन आंखों से क्या क्या देखा है, सुंदर एक सुख खुशी और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी। विचार करें, भगवान को देखने के बाद कुछ भी देखना बाकी नहीं रह जाता। उसको पाने के बाद आगे बोलो, ये है असली बात, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। पर यहाँ तो बहुत कुछ पाना बाकी है। मन नहीं मानता कि तुम्हें पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, लेकिन इसका अर्थ है कि उसे पाने के बाद मनु संसारिक प्रश्नाओं के पीछे नहीं भटकता, उसे संतोष प्राप्त हो जाता है, एक बहुत बड़ी इंतजार समाप्त हो जाती है, एक बहुत लंबे काल की प्यास बुझ जाती है। ऐसी सुंदर प्राप्ति हम सबको हुई है। तो बाबा फिर से हमारे सामने आएंगे और हम बाबा के कहे अनुसार कुछ स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आपको 5 स्वमान दे देना चाहता हूँ। आप चाहे रोज 5 का अभ्यास करें या 1-1 का अभ्यास करें, ये स्वमान हमारे जीवन को महान बना देते हैं, दिव्य बना देते हैं। इससे स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी और आपको परमात्म मिलन का सच्चा सुख अनुभव होगा। पहला वही स्वमान जो हम सदैव चर्चा करते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ। सब भी कितने सुंदर हैं, स्वीकार करेंगे मैं महान हूँ, है ना सभी महान या नहीं? जैसे ही हम अपने को खुश कर रहे झूठ मूठ महान हैं, जिन्होंने भगवान को इस धरा पर उतरते देखा है वो महान हो गए ना। जो संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं, काम कर रहे हैं, जो दूसरों को भी भगवान से मिला देते हैं, जो मनुष्य को देवता बनने का पाठ पढ़ा देते हैं, वो महान हुए ना। हम महान हैं, इसका नशा हो जाए हमें। दूसरा सुमान, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं विजय रतन हूँ। चौथा स्वमान, मैं पूर्वज हूँ, आधार पूर्वज। और पांचवा स्वमान आप करके देखेंगे, मैं क्लास में ये पहली बार शायद कह रहा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ इस धरा पर शांति स्थापना के लिए। तो संसार की अशांति मुझ में नहीं आ सकती, मेरी शांति संसार में जाएगी। ऐसा अपने को स्वमान दे दें, नशा दे दें, इनका अभ्यास बहुत अच्छी तरह करते रहेंगे। मैं आप सभी को एक दूसरी बात भी याद दिला देना चाहता हूँ, जो मुझे भी बहुत प्रिय है, आप सबको भी प्रिय है। सब उसका बहुत अभ्यास करेंगे, उसके अनुभवों की भी अथॉरिटी बनेंगे। भवन का ना, हर बात के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएं। और वो है, सब जी बहुत अच्छे हैं, मैं सबको बार बार याद दिलाता हूँ तो मुझे बहुत याद रहता है, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए ये हो नहीं सकता। हम बाबा को बुलाया करें, भोजन पे बुलाएं, घर से बाहर चलते हैं तब बुलाएं, कार्य में बुलाएं, बुलाएं बाबा को, भूले नहीं। भोजन खा रहे शुरू में बुला लें, मान लो भूल गया हो तो बुला लें, ये नहीं कि अब नहीं बुलाना है, भाई एक मिनट हो गया भोजन खाते हुए हम तो भूल गए अब नहीं बुलाएंगे, फिर बुला लो बाबा को, बाबा हम तो भूल गए आ जाओ, कोई बात नहीं बाबा फिर आ जाएगा। इसके अनुभव करके देखें क्या सुंदरता है, भगवान हमारे साथ रहने लगे तो क्या क्या होता है, जीवन की समस्याएं कैसे लोप होती हैं, हमारा जीवन निर्विघ्न कैसे रहता है, हमारी सफलता और विजय कैसे प्राप्त होती है, जीवन कैसे सहज बनता है। हजार भुजाओं वाला हमारे साथ रहे तो हमारे कार्य कितनी जल्दी पूरे होते हैं, ये सब अच्छी तरह अनुभव करना है। पसंद है? माताओं को तो ये बात बहुत प्रिय होनी चाहिए, है या नहीं? टीचर बहने बैठी है कहीं आपको भाषण करना हो, कुछ परेशानी की बात नहीं, कह दो आ जाओ ज्ञान के सागर, आ जाओ भाषण करना, देखो क्या होता है। फिर एक बात पर और हम थोड़ा सा विचार करेंगे, पांच मिनट। बाबा दो बार कह आए हैं अभी अभी, बाबा ने कहा तुम योगी जीवन वाले हो, और जीवन जीवन दो चार घंटे की नहीं होती, जीवन माना जीवन, तो तुम्हारा योग भी ऐसा ही हो जैसे तुम्हारा जीवन है, दो चार घंटे का नहीं। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बाबा, जैसे अमृत वेले बहुत अच्छी स्थिति, किसी की पावरफुल स्थिति रहती है, वैसी स्थिति कर्म योग में भी हो, इससे हमें ज्यादा फायदे होंगे। ये एक अलग बड़ा विषय है कि कर्म करते हुए हम पावरफुल योग अभ्यास में कैसे रहें, पर पहले हम इसका महत्व तो समझ लें। अगर कर्म करते हम बहुत अच्छा योग का अभ्यास करते होंगे तो कर्म का इफेक्ट हम पर नहीं आएगा, कर्म हमें प्रभावित नहीं करेगा, कर्म हमें बांधेगा नहीं, कर्म उलझाएगा नहीं, सहज भाव से कर्म होंगे। क्योंकि कर्म करके बाबा को याद करना माना, परमात्म शक्तियाँ भी हमारे साथ काम करेंगी, ये बाबा कह आए हैं। तुम अकेले काम करो, सोच लो, या परमात्म शक्तियों के साथ काम करो, कितना सुंदर होगा। अब बात है, हमें पावरफुल योग करना है, इसके लिए हमारे अंदर बहुत धारणाओं की आवश्यकता है, ताकि हम कर्म कॉन्शियस न हो जाएं, कर्म हमें अपने बंधन में न बांध ले, अभी ये काम करना है जल्दी करना है, सब कुछ भूल जाएं। दो अभ्यास, एक तो स्वमान के अभ्यास हमें कर्म करते हुए करने ही चाहिए, परंतु यदि हम पावरफुल योग करना चाहते हैं, ये भी योग है कि कर्म करते हम बाबा को अपने पास बुला लें, हजार भुजाओं सहित आ जाओ, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन पावरफुल स्थिति किसे बाबा कहते हैं, कि कर्म हम हाथ से कर रहे हों और बुद्धि बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो, जैसे हम नैनों से उसे देख रहे हैं, यहाँ कर्म कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत है। बुद्धि रूपी नेत्र को यहाँ से निकाल कर ऊपर लगाए रखना, इसमें थोड़ी तपस्या अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। इसको और सरल हम कर सकते हैं, यहाँ हम कर्म कर रहे हों और इस फीलिंग में रहें कि ऊपर से बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। अभ्यास से ये भी संभव है। तीसरा अभ्यास, हम अपने को ऐसी स्थिति में स्थित कर दें कि कर्म हम यहाँ कर रहे हों और अभ्यास करें, मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, उसे देखते रहें, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र है, नीचे हम कर्म कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग अभ्यास करते हुए हम अपने योग को पावरफुल बनाएंगे। जो भी आप में से ये कर सके वो ये भी करे, ये न हो तो स्वमान का अभ्यास और बाबा का आह्वान, ये तो सबको करना ही है। ये करते रहने से धीरे धीरे योग पावरफुल भी हो जाएगा। ओम शांति।